أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز بھائیو و عزیزو، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی حدیث پیش کی گئی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا فنکحوا ما طاب لکم، جو خاتون تمہیں اچھی لگیں، تمہارے مناسب ہو، نیک ہو، دیندار ہو، ان سے نکاح کرو۔ مسنا، چاہے دو دو ہو، چاہے تین تین ہو، چاہے چار چار ہو، یہ کوئی فرض واجب نہیں، حالات مناسبت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔ حدیث تلاوت کی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، جس میں خرافات نہ ہو، جس میں اسراف نہ ہو۔ ابھی صبح کی بات ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اسی حدیث کے بارے میں پوچھا کہ مولانا برکت کیا چیز ہے، برکت کسے کہتے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ برکت محسوس کی جا سکتی ہے، برکت کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا، جیسے آم، آم کی مٹھاس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، یہ وجدانی چیز ہے، لیکن کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ چند الفاظ میں کمپیر کیجئے، مقابلہ کیجئے کہ آم کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے اور گڑ کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے، آپ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، ان کے سامنے آم کاٹ دیجئے، وہ کھا لیں کہ آپ محسوس کیجئے کہ اس کی مٹھاس کیسی ہے۔ میں نے کہا برکت اسی کو کہتے ہیں۔ برکت کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے جو کالی ہو، سفید ہو، آ رہی ہو، جا رہی ہو، جس کا اعجاز و اکرام کیا جاتا ہو، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ہے نکاح کی برکت۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے مانگتے سکھایا کہ ربنا کا معنی اے ہمارے رب، ہب لنا، ہب کا معنی عطا کر، اسی سے وہاب، دینے والا۔ ربنا ہب لنا، اے اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں عطا کر، ایسی اولاد اور بچے عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ان بچوں کو پرہیزگاروں کا امام بنانا۔ اب ایک باپ کو کتنی خوشی ہو کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو، اچھی پوزیشن پر ہو، نیک ہو، خوشحال ہو، جو دنیا میں بھی ان کے لیے کارآمد ہو اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، ان کے لیے دعائیں کرتی رہے، اور جو کچھ نیک اعمال اولاد کرتی ہے باپ کے کھاتے میں، ماں باپ کے کھاتے میں یہ ساری نیکیاں درج کی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا اسی کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے، اور کہا بے برکتی، بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ والد کو اولاد سے تعلق نہیں، اولاد کو والدین سے تعلق نہیں، لوگ بکھڑے پڑے ہوئے ہیں، نہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے مثال دے کے سمجھایا اور میں بارہا مثال دیتا ہوں، جیسے ایک صاحب بیمار ہوئے، اسپتال میں मैं उनसे मिलने गया, उनके कई एक लड़के थे। मैंने उनसे कहा कि अपनी जबान में कहा कि आपका कोई लड़का, मैंने छोरो कहा, मैंने कहा तुम्हारा कोई छोरो नहीं आयो, यानी आपकी कोई औलाद आपको मिलने नहीं आई। फौरन उन्होंने मुझे टोका, तो मौलाना आप छोरा का लफ्ज बोले मुझे तकलीफ होती है, आप छरा का लफ्ज इस्तेमाल करें। वो एक से लेकर जितने हैं वो सारे के सारे छोरे नहीं छरे हैं मेरे लिए। तो वफात हो गई कसम पुरसी की हालत में। तो औलाद नेक हो यही तो सबसे बड़ी बरकत है, इसीलिए दुआ दी जाती है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। दुआ ये है कि दूल्हे को दुआ दी जाती है बारक अल्लाह बरकत दे, वबारक अलैकुमा अल्लाह तुम दोनों में बरकत दें, यानी तुम्हारी जिंदगियों में बरकत दें, अल्लाह उम्रे दराज अता फरमाए, अल्लाह किसी का मोहताज न करे, नया जोड़ा सलामत रहे, वजमा बैनकुमा बिल खैर, यानी तुम्हारा संसार जवानी से लेकर वफात तक बुढ़ापे तक जो अल्लाह ने मुकद्दर फरमाया है वो चलता रहे, इसी को तो बरकत कहते हैं। तो बरकत ये चीज होती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़मुन निकाह बरका, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें इसराफ न किया गया हो, फजूल खर्ची न की गई हो। अब देखिए हम तो कहेंगे और कहना चाहिए, बहुत से लोग कंकोतरियां हैं, एक एक 12-12 रुपए, 15-15, 25-25 रुपए की होती है, हालांकि जिसको बुलाना हो एक कॉल कर दो चंद पैसों में हो जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, मेरे अल्फाज नहीं, आप पूछ लीजिए किसी से भी, इख्वान कहते हैं भाई को और शैतान से सभी वाकिफ है। तो इन्नल मुबज़्ज़िरीन, मुबज़्ज़िरीन का माना फजूल खर्ची करने वाले, अल्लाह की इस नेमत को गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने वाले शैतान के भाई है। और शैतान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अल्लाह का नाफरमान है, नाशुक्रा है। आदमी ये फख्र करता है कि माल मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी जिद्दोजहद है। जी हाँ, हमारी जिद्दोजहद है, लेकिन अक्ल किसने दी, खुद तुम्हारा वजूद कैसे है, समझ किसने अता फरमाई है, तुम्हें मौके किसने फराहम फरमाए। इसलिए एक मुसलमान पाबंद है माल खर्च करने में भी, हाँ उसको इजाज़त है कि मबाह चीज़ों में इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर अच्छा घर फ्लैट बनाता है, कोई मसला नहीं, उसमें आराम की सारी चीज़ें लगाता है, कोई मसला नहीं, अच्छी से अच्छी गाड़ी लाता है, कोई मसला नहीं। तो जहाँ तक आराम का ताल्लुक है आदमी अपने आराम के लिए सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जहाँ नामो नमूद शोहरत हुई हराम हो जाएगा। गाड़ी इसलिए लाए कि लोग कहे कि क्या गाड़ी है, पूरे गोदरे में ऐसी गाड़ी नहीं, अगर ये नीयत हुई तो ये हराम हो जाएगा। आदमी खिलाता ही निकाह में, खिलाए, खिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं, मखलूक को खिलाने में कौन रोकता है, खिलाइए पूरे गोदरा को खिलाइए। लेकिन अगर नीयत बदल गई, कोई ये कहे कि 25 डेगे थी और 40 डेगे थी, अगर ये नीयत हो गई तो फौरन तब्दीली हो जाएगी। तो हमारे यहाँ नीयत का बहुत बड़ा असर होता है, फर्क होता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि निकाह में सादगी लाई जाए। सादगी कैसी सादगी, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का निकाह है, अल्लाह के नबी को पता नहीं, बोलो अशरय मुबशरा। अशरय मुबशरा का माना वो 10 सहाबी जिनको अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी, उनको अशरय मुबशरा, यानी वो 10 सहाबी जिनको बशारत दी गई है। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का निकाह हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए, देखा तो उस जमाने के कल्चर के लिहाज से हल्दी लगी हुई थी। तो कहा कि अब्दुल रहमान क्या हुआ, कहा अल्लाह के नबी निकाह किया, अच्छा निकाह किया। अब हुजूर ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हालांकि उस जमाने में कोई मदीना बहुत बड़ी बस्ती थी क्या? कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिल पर नहीं लिया कि हमको नहीं बुलाया। उन्होंने भी ज़रूरी नहीं समझा। अब हमारे मुआशरे पर उसको कंपेयर करो कि बेचारा ये बुलाने वाला भूल से, वो कष्ट नहीं, जानबूझकर नहीं, वो अपनी मशगूली में कभी भूल से कहना और भुलाना रह गया। तो मैं अपनी बात कहूँ आप पर तो क्या इल्ज़ाम लगाओ, मुझे शिकायत पैदा हो जाएगी कि यार मोहल्ले में निकाह है और मुझे नहीं कहा, इमाम साहब को नहीं बुलाए, कैसे लोग हैं, उनको ज़रा भी इज्जत नहीं, तमीज़ नहीं, ये बात हो जाती है। तो बहरहाल सादगी। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आने वाली ख्वातीन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हुस्न सुलूक किया ही जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते मरते कहा था, क्या कहा था, इत्तकुन निसाह, के औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। फिर आपकी रूह निकल जाती है, आपकी वफात हो जाती है। यूं कहा, फ़इन्नहुन्ना अवानिन, वो बेचारी तुम्हारे यहाँ एक कैदी बनकर आई है। उलमा ने लिखा है कि उस खातून की कुर्बानी तो देखो कितनी बड़ी कुर्बानी है। दो लफ्ज में मैंने कबूल की, दो लफ्ज में तमाम मालूफात को छोड़ दिया, वालिदैन को छोड़ दिया, अइज़्ज़ा वक़ारिब को छोड़ दिया, दोस्त बिरादर को छोड़ दिया, सहेलियों को छोड़ दिया, घर का खाना जो उनके लिए मुनासिब था उसको छोड़ दिया, और बिचारी कसम पुरसी की हालत में एक सास के ताबे बनकर आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी इज्जत की जाए, अल्लाह से उनके बारे में डराया जाए। बहरहाल हमारे यहाँ ये चीज है, लेकिन कभी कभी उसके हक में कोताही होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके जो कारनामे हैं उनके कभी तारीफ भी तो किया करो। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब का वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे मालूम है कि मुख्तसर करना चाहिए, लेकिन मैं ये मजमा कहाँ से लाऊंगा भाई, ये तो मेहमान है, दो चार बातें सुन ले, मुझे सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। लंबा बयान नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर देता हूँ, जैसे आज कर रहा हूँ। अदर डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने एक वाकया बयान किया कि हमारे एक शागिर्द ने मेरी दावत की, मैं गया। उस खातून ने सुबह से शाम मेहनत करके बेहतरीन खाना बनाया, बिल्कुल मुनासिब खाना बनाने के बाद मेरा जी चाहा कि उस खातून का शुक्रिया अदा करो, उस बेचारी ने कितनी मेहनत की है, ये हमें समझना चाहिए। वाकईतन ऑर्डर नहीं, आप बनाई दीजिए, ये कर दे, और वो बेचारी लर्जा, अगर नहीं होगा तो ये धमाल करेगा। खैर सब ऐसे नहीं होते, लेकिन चूंकि एक वाकया भी हो तो मुझे तो मुआशरे और समाज का पिक्चर और तस्वीर आपके सामने पेश करनी पड़ेगी। तो बेहतरीन खाना था, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि बीबी साहेबा आपने बड़ा उम्दा खाना बनाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। मेरे इस जुमले को सुनना था कि एकदम वो बेहोश हो गई, गशी तारी हो गई, मैं डर गया, क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद जब उसको इफाका हुआ, इफाका हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि मौलाना आपने जब मेरी तारीफ की, मेरे खाने की तारीफ की, मेरा दिल भरा है। देखिए हर एक को अपनी चीज अच्छी लगती है, किसी में कोई खूबी हो तो हुजूर कह रहे हैं कि इनको कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खूबी है, हमको पसंद आई, छुपाइए नहीं। जिसमें जो खूबी हो, अखलाक की, आदात की, जिस कबील की खूबी हो, हुजूर फरमाते हैं कहिए उनसे कि आप में ये खूबी है, अल्लाह इस खूबी को बाकी रखे, ये हमें हुक्म है। कहा कि जब तारीफ की आपने तो मेरा दिल भराया कि मैं अपने शोहर को 40 साल से खिला रही हूँ, लेकिन कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। होटलों की तो तारीफ करते हैं कि फला जगह बहुत अच्छा, वो सुन लेगी, लेकिन उनके दिल पर क्या गुजरती है मालूम है कि यहाँ जिंदगी भर खिला रही हूँ और हमारे खाने की कोई तारीफ नहीं, हौसला अफजाई नहीं, और ये होटलों की तारीफ करते रहते हैं। इसकी तारीफ करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, बीबी आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो खुलासा ये है कि खुराफात न हो, खामोखा खर्चा न हो, पैसे बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ज़्यादा हो तो उसको बचाइए, आगे कभी काम लगेंगे, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत को इस तरह बहाया नहीं जाता। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।